श्री श्री राधा विनोद जी भगवान की, श्री श्री लोकनाथ जी महाराज की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय, श्री खदिरवन धाम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम, तो आपका खदिरवन धाम में स्वागत है। 3 फरवरी 2019 के दिन आपका श्री खदिरवन में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंजन वन में एक बात बताना रह गया था। वो ये था, ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान अंजन शलाकया। जैसे राधा रानी को भगवान ने अंजन लगाया, वैसे ही गुरु हमारे उनके शिष्यों के लिए ज्ञान का अंजन लगाते हैं। हम सबका जीवन जन्म जो होता है ना, वो अंधकार में होता है। कौन सा अंधकार? ज्ञान का अंधकार। वो ज्ञान के अंधकार के अंदर हम जन्म लेते हैं और भटकते रहते हैं सुख की खोज में, और गलत जगह पर सुख ढूंढने की वजह से अनंत बार ठोकरे खाते रहते हैं, और सुख तो नहीं प्राप्त करते हैं लेकिन दुख को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए श्री गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। आपको नौकरी मिलेगी, आपकी बहू मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, घर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है ये जीवन आपका बेकार है। गुरु ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से तार देते हैं। तो वो ज्ञान का अंजन हमारे आंखों में लगाते हैं, और जब वो ज्ञान का अंजन लगाते हैं तो हमें सत्य की पहचान होती है कि जीवन का सत्य क्या है, वास्तव में हमें जो चाहिए वो कहाँ है, और हम कहाँ भटक रहे हैं, और हमें कहाँ जाना चाहिए। हरि बोल। आवाज ज़्यादा हो गया है, इसलिए गुरुजी का ऋण जो है वो कोई चुका नहीं सकता। लेकिन गुरुजी का ऋण चुकाने के तो बहुत आगे वाली बात है, गुरुजी मिलने चाहिए ना पहले, उनका ऋण बने तब चुकाए ना उसको। तो आप कथा सुनते जाएंगे, हर साल सुनते जाएंगे, और गुरुजी की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। इसलिए सदगुरु का मिलन, सदगुरु का उपदेश और कृपा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सदगुरु नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हमारा जीवन का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो वो जो अंजन वन था उसमें ये भी सीख मिलती है कि जब तक गुरु के द्वारा ज्ञान का अंजन प्राप्त नहीं होता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, बार बार आएंगे और तड़पते रहेंगे। देखिए बार बार आने में क्या तकलीफ है? अच्छा है, अभी डॉक्टर थे, अभी अगली बार डॉक्टर बन के वापस रहेंगे, यहाँ पर मौज करेंगे, इसमें क्या है, कैंप करेंगे, है ना, यात्रा करेंगे, अच्छा ही है ना। अगर अच्छा नहीं तो यहाँ पर यात्रा क्यों कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर सकते यात्रा, नहीं करेंगे। लेकिन बार बार आने में क्या दिक्कत है बताइए? जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा चल रहा है ना बीच में, उसका क्या। देखो आते ही उन्होंने मुझे बोला कि उनके मरीज का एक्सीडेंट हो गया, वो क्या जख्म हो गया, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ये कष्ट है कि आनंद है? हाँ, कल उनका फोन आया, उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो खुशी की बात है क्या? कितना दुख है, कितना परेशानी है, कितनी पीड़ा है, कितनी समस्याएं पैदा होती है उसकी वजह से, जन्म की तरफ से है, बुढ़ापे की तरफ से है। हाँ, अभी देखो बुढ़ापे तो घुटनों चल नहीं सकते हैं, पहले भागते थे अभी चल भी सकते नहीं हैं, पहले बैठते थे अभी बैठ भी सकते नहीं हैं, हर जगह दर्द है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। हाँ, फिर कितने कष्ट है दुनिया में, धुंध चल रही है तो किसी को निमोनिया हो जाएगा, है ना, किसी को बुखार आ जाएगा, कोई भर्ती हो जाएगा, गर्मी में कोई बेहोश होकर गिर जाएगा, बारिश आएगा तो तूफान में कितने घर उद्ध्वस्त हो जाते हैं, कितने प्रकार के तकलीफ है। अभी हम आ ही गए हैं तो हम रह रहे हैं और कुछ ना कुछ हाथ पांव हिला रहे हैं सत्संग में, लेकिन यहाँ से निकलना है। और जब तक आपको ये विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ से निकलना है, तब तक आप कितना भी करो, भजन करो, कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपके दिल में यकीन नहीं कि आपको बाहर निकलना है इसमें से, तब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रवृत्ति क्या है? यहीं रहो, तो करते रहो, वही भजन कर रहे हो, वही भजन करते रहो, क्या बात है उसमें, तकलीफ क्या है, ऐसा लगेगा हमको, लेकिन हम ऐसा नहीं है। आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, बदल जाएगी वो स्थिति। जैसे अभी आप, मैं ये प्रवचन अगर अमेरिका में करूँगा ना, देख लो आप ध्यान से सुनो, यही प्रवचन समझो मैं अमेरिका के मंदिर में बैठ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर पुरुष भी ऐसे हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के, बनियान पहन के बैठे रहेंगे, औरतें भी ऐसी हाफ पैंट और क्या क्या गंदे गंदे कपड़े पहन के, ऐसे बाल छोड़ के ऐसे बैठे रहेंगे, ऑलमोस्ट कपड़े नहीं है ऐसे समझ लो, कथा में मिलेंगे आपको बैठे लोग ऐसे। तो वो स्थिति दूर नहीं है हमारे लिए भी, थोड़ा हमारे से तो दो कदम आगे है वो, और हम भी उसका अनुगमन कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये स्थिति यहाँ पर आएगी। अभी मैं बोल रहा हूँ आपके बालों को बांध के कैंप आओ, बाद में बोल नहीं पाऊंगा मैं, सब लोग ऐसे आएंगे, क्या करेंगे, सेवा में लगाना है तो क्या करेंगे, फिर लिखना पड़ेगा हाफ पैंट में मत आओ, फुल पैंट पहन के आओ, क्योंकि वहां पर तो लोग हाफ पैंट में हवाई जहाज में सफर करते हैं, अमेरिका से इंग्लैंड में मुंबई आ जाते हैं हाफ पैंट में ही, बनियन पहनकर, क्या है अभी कोई कल्चर ही नहीं है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि आगे वापस दोबारा यहां पर आना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि आगे जाकर और बुरा होने वाला है। आप कहेंगे कपड़े में क्या तकलीफ है, चलो कपड़े की तकलीफ छोड़ दो, पीने को पानी नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा वो दूषित मिलेगा, गिन गिन के चार ग्लास मिलेगा दिन में, लोग स्नान नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे उसी को पहनेंगे, भूमि से अन्न नहीं उगेगा, खाने को नहीं मिलेगा, फिर सब जानवर खाएंगे, पंछी खाएंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर मनुष्य को खाएंगे, जो कमजोर है उसको मार के खाएंगे, जिंदा रहना ना। कहते हैं हर एक व्यक्ति के किडनी के अंदर 50-50 स्टोन होंगे, क्योंकि पानी नहीं जा रहा है, साफ कैसे होगा, सब जगह दर्द होगा, आयु जो है इतनी सी होगी, 20 साल की तो बुढ़ा हो जाएगा आदमी। अभी भी देखते हैं ना, 20 साल 25 साल हो गए तो बाल सफ़ेद होते हैं लड़कियों के और लड़कों के, 20 साल में हो जाते हैं, स्कूल से ही हो जाते हैं, ज़्यादा बुढ़ा होने की जरूरत नहीं है। तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर जीवन में छोटा छोटा होते जा रहे हैं, 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आके मर जाता है वो। तो आगे हम आएंगे ना, तो आज हम इस स्थिति में हैं, और कुछ साल जिएंगे मरेंगे, फिर और आएंगे, तब कुछ समय माँ की गोद में रहेंगे, उसके बाद में जब बड़े होकर निकलेंगे ना, तो आज से कम 50 साल के आगे की बात है वो, तब कितना कष्ट होगा सोचो आप जरा, भविष्य में कैसा होगा, इतना पॉल्यूशन होगा, कोई पेड़ नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा, कोई फूल नहीं होगा, खाने पीने के लिए धान्य नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, भूमि से अन्न नहीं होगेगा। ये सारा मैं तर्क से समझ रहा हूं, लेकिन शास्त्र में भी दिया है, भागवत में भी पूरा वर्णन दिया है, भागवत में वर्णन दिया है, आपको हैरान हो जाएंगे आपको देखकर, भागवत में वर्णन दिया है 12वें स्कंद में कि माता गर्भवती बनेगी केवल बालक को जन्म देने के बाद खाने के लिए, क्योंकि भोजन ही नहीं है कुछ, क्या करेंगे, कोई सोया हुआ आदमी तो उसको मार के खाएंगे, कोई बलवान नहीं होगा तो उसको मार के खाएंगे, जीवन भी जीना है ना, जिंदा भी रहना है, बड़ी तो कान पड़ी, जो बलवान रहेगा वो कमजोर को मारेगा और खाएगा, इस तरह का स्थिति में आप रह सकते हो क्या? आप पंछी को देखा, पंछी को वो दाना खाता है, चार बार देखता है इधर, पापा से दाना खाता है, वो चार बार देखता है, क्यों देखता है ऐसे? वो असुरक्षित है, कोई कौवा ना आके उसको मार ले, कोई घार ना आके उसको मार ले। अगर आपको थाली भी आपको मालपुआ खिलाया उधर, और कोई शेर लगा है पीछे, कोई बंदूक देके आपके आगे खड़ा है, तो अपने मालपुआ खाओ कि बंदूक को देखूं? ऐसे खा सकते हैं आप लोग? लेकिन पंछियों को खाना पड़ता है ऐसे ही, आतंक के बीच में भी उनको अपना पेट भरना है ना। अभी बाहर धुंध पड़ी है, लेकिन पंछियों को और कुत्तों को बिल्लियों को अपना खाना ढूंढना है, उसके अंदर छुट्टी नहीं है उस दिन आज, उसमें भी उनका भोजन देखना है उनको, उतने बच्चों को जो छः छः बच्चे पाल के रखे हैं ना कुत्ता बिल्ली के, वो भी देखना है उनको। कोई ब्लैंकेट नहीं है उनके पास, कोई हीटर नहीं है, कोई घर नहीं है, मर जाते हैं ठंड में ऐसे ही। तो यही अवस्था होगी आगे जाकर, जो कुत्ता बिल्लियों की हमारी भी हो जाएगी वही हालत, असुरक्षित, आतंक, बाकी जीवों से हम अभी आप ही भाई बहन ही खाएंगे आपको भूख के मारे। आज आपको कल्पना भी, मैं क्या कल्पना कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी ना, तो दूसरे महायुद्ध हुआ था ना, महायुद्ध विश्व युद्ध हुआ था ना, दूसरे युद्ध में जब सैनिक युद्ध कर रहे थे तो ऐसे जंगल में जाके युद्ध कर रहे थे, पहाड़ में, जंगल में, किधर घर नहीं कुछ नहीं, तो खाना भी समाप्त हो गया, तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों का शव जो है ना उसका मांस खाया। ये 1942 की बात है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत साल हो गए उसको, 70-80 साल हो गए उसको। दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ था, क्या करे, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर दोस्त का भी शव फाड़ कर उसका मांस खा लिया जिंदा रहने के लिए। इसलिए विचार करो उसके ऊपर, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए? भागवत आपको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का वर्णन दे रहा है, जगा रहा है आपको, सो मत, अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में सोना मत, जागो, आगे क्या हो रहा है देखो, क्या हो गया है वो भी देखो, क्या हो रहा है वो भी देखो, और क्या होने वाला है उसका भी बुद्धि से तर्क करो, समझेगा आपको क्या होने वाला है। जब तक कहते हैं ना अच्छी हवा का झोंका है, तब तक नैया पार कर लो, बाद में क्या होगा कौन देखा है। हम लोग यहाँ ही मस्त हैं इधर उधर मजा करने में, ऐसा नहीं है यार वास्तविकता। मृत्यु अटल है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आपको धोखा दे सकती है, वो सारे प्लान उध्वस्त कर सकती है, चाहे कितना सपने बनाओ, चाहे इतना अमीर हो जाओ, मृत्यु नहीं छोड़ेंगी हमको। फिर और खराब हो गए हुए विश्व में आएंगे हम दोबारा। आज तो भक्तों के संग में जन्म मिल रहा है, पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, कितना कष्ट करना पड़ेगा ये सब ढूंढने के लिए जो आप सुन रहे हैं आज। तो जब मिल रहा है आसानी से, चल रहा है सब कुछ, तब तक कर लो, वेट मत करो, कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा मत करो। और बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है सत्संग में तो है ना, गुरु की जरूरत क्या है, गुरु गुरु करके बहुत तकलीफ हो जाती है, बंधन में फंस जाते हैं हम लोग तो शादी क्यों करते हैं, वो बंधन नहीं क्या? तो मनुष्य जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो भगवान के पास हमको ले जाएगा, वही ज्ञान का अंजन देगा, वही पहुंचाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सुंदर वन है खदीर वन, 12 वनों में से एक वन खदीर वन है। 12 जो वन बताए ना जो भगवान को बड़े प्रिय हैं, उसमें से 7 जमुना जी के उत्तर दिशा में हैं और 5 नहीं पूर्व दिशा में हैं और इधर राइट पश्चिम दिशा में, 5 इस तरफ है, तो 5 वाले में खदीर बनाता है। खदीर का एक अर्थ है कत्था, जो पान में डालकर लाल रंग आता है, लाल रंग, उसको कत्था कहते हैं, उसको खदीर नाम है संस्कृत में, आयुर्वेद में बहुत गुणकारी औषध है वो, खास करके गले के लिए खराश होती है तो खदीर आदि वटी, खदीर की वटी बनती है, हम लोग बचपन में हमारे दुकान में बेचते थे उसको जब मैं बैठा था, कत्था कहते हैं उसको, काथ। तो यहाँ पर बहुत कत्था के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम खदीर वन है। और नंद बाबा के 2 बड़े भाई थे, 2 छोटे भाई थे, क्या नाम था उनका, बड़े भैया का नाम क्या है सबसे? उपनंद। सेकंड नंबर के भैया का नाम क्या है? अभी नंद, फिर नंद महाराज अपने, उसके बाद चौथा सुनंद और पांचवा नंदन, नंदन चाचा। तो उपनंद बाबा की जगह है ये वन जो है ना, वो उपनंद बाबा का है। उपनंद बाबा की खिरक यानी जलाशय जो आप देख रहे हैं ना, पीछे दिखाऊंगा आपको मैं, वो यहाँ पर हुआ करती थी, अभी भी है। और उपनंद बाबा की गौशाला भी यहाँ पर थी, उपनंद बाबा की गौवें भी यहाँ पर पानी पीती थी, और बाकी कृष्ण भी अपने बाल लीला में यहाँ पर अपनी गायों को लेकर आते थे, बछड़ों को, बच्चियों को, और पानी पिलाते थे। बहुत सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर उपनंद बाबा के खिरक में। और ये वत्सपाल लीला की जगह है, यानी जब भगवान बछिया और बछड़ियों को चलाते थे उस समय यहाँ पर आते थे। क्योंकि नंदगांव से भी आप ऊपर चढ़ेंगे तो भी आपको दर्शन होगा, अगर पता है कहाँ पर है तो नंदगांव से जितने दूर तक नज़र पहुँचती है वहीं तक जाने की इजाज़त थी कृष्ण भगवान को, बलराम को, बाल स्वरूप में वत्सपाल लीला के माध्यम से। तो ये खदीरवन बाल लीला का जगह है। तो एक बार भाई ऐसे ही सब लोग उत्साह में है ना एकदम, जय जय श्री राधे। तो एक बार भगवान बच्चियों को और बछड़ों को लेकर यहां पर आए। अच्छा सरोवर है, बाबा का है, मतलब ताऊ जी का है। आए, जलपान किया तो सब लोग ने देखा, अरे ये क्या है, सफेद पर्वत कहाँ से आया इधर, बिल्कुल सरोवर के किनारे सफेद पर्वत। बाबा ने देखा, अरे गौर से देखा तो सफेद पर्वत नहीं है, ये तो बगुला है, इतना बड़ा पर्वत के समान, जिसका सर जो है वो बादलों में है, जो सर जो उसका है ना वो वज्र की तरह कठोर है। तो यहां से नजर आ रहा है कितना कठोर होगा वो, इतनी लंबी चोंच है उसकी, लाल लाल आंखें हैं उसकी, ना सफेद रंग का शरीर है पूरा भरा हुआ। और सब बगला कैसे रहता ना, स्थिर रहता है वो, हिलता भी नहीं। देखो पानी में बैठता कैसा रहता है, लगता है कि मुर्दा है, जिंदा है कि पुतला है, लेकिन वो चिंतन करते रहते हैं कब मछली आएगी, छक करके पकड़ लेता है उसको। मछली को भी लगेगा ये तो खंभा है, डंडी है, लकड़ी होगी शायद, कोई हिल नहीं रही है, तो आराम से घूमते हैं, पास में आए तुरंत उसको पकड़ लेता, निकल जाता है। तो एक बगुला ध्यान नाम के एक नामकरण है, संज्ञा कहते हैं उसको, एक वाक प्रचार है बगुला, बगुला ध्यान मतलब क्या, लगता तो बड़ा संत है वो, इतना एकाग्रता से बिना हिले खड़ा है। हाँ बगुला ध्यान मतलब क्या, वेरी बाहर से दिखता है कि बड़ा संत है एकदम, एकदम इतना ध्यान तो मनुष्य लगा सकते नहीं बगुलों को देखो, लेकिन मन में क्या चिंतन चल रहा है, जब भोग सामने आएगा तुरंत पकड़ लूंगा उसको। मन में विषयों का चिंतन, बाहर से ध्यानी योगी लग रहा है वो, ऐसे स्थिर बैठा हुआ है। फिर भी हम लोग खेल रहे सब बच्चे आराम से, कुछ स्थिर बैठा ना वो, क्या है कोई चिंता नहीं उसकी, खेल रहे हैं उसमें। उतने में सब लोग अभी पानी पी के यहां वहां की बातें खेल रहे हैं, बच्चे कैसे होते ना वो किलबिलाहट करते रहते हैं। अचानक उसका बादलों में जो सर था वो लंबा होता ना गर्दन उसकी, यहां से लेके उधर तक ऐसे ऐसे ऐसी गर्दन होती है, लंबी गर्दन, वो जो आकाश में थी ना वो सीधे झप करके जमीन पर आ गई, कृष्ण को चोंच खोल के खट करके निकल लिया उसने। कुछ समझ में आने के पहले ही कृष्ण उसके चोंच में से उसके मुंह के अंदर चला गया, फिर आक्रोश करने लगे, खायरो है खायरो है खायरो है, मतलब क्या, अरे खा रहा है खा रहा है खा रहा है, खा लिया खा लिया, ब्रज भाषा में कहते हैं खायरो है खायरो है, मतलब खा रहा है खा रहा है, हे खायरो है खायरो है, इसलिए इसका नाम पड़ा खायरा, इस जगह का नाम। वहां पर सब ग्वाल बाल चिल्ला रहे थे, खा गया बगुला खा गया कृष्ण को, खा गया अर्चना देवी बजरो, बगुला खा गया कृष्ण को, खा गया। तो अभी जीवन प्राण ब्रज का, ब्रजवासियों का, ब्रह्मांड का, निर्माण का, गौलोक का समाप्त हो गया। सबकी आंखों के सामने एक क्षण में जो सबको परास्त करता था, पहाड़ जैसे राक्षसों को समाप्त कर देता था, अब तक पहाड़ उठाए नहीं, अब तो 7 साल में उठाए ना, ये तो 5 साल के पहले की अवस्था है। देखिए जिसने पुतना को मार डाला 12 मील वाले, शक्टासुर को मार डाला, तृणावर्त को हवा से जमीन पटक दिया, अगासुर को मार डाला, उसको उसने गिल निगल लिया एक झटके में, समाप्त कर दिया, वध कर दिया। तो हताश हो गए सब लोग एकदम, जैसे जीवन प्राण ही खत्म हो गया उनका। तो वहां से देवता लोग आए, वहां से देवता लोग आए। अभी देवताओं के लिए भी ये डू और डाई का बैटल है, मतलब क्या करो या मरो, क्योंकि तो भगवान तो चले गए, भगवान खत्म खत्म हो गए। हर बार ये टेंशन होता है ना, हिरण्यकश्यप आया, कौन जीतता है, विष्णु जीतेंगे नरसिंह भगवान कि हिरण्यकश्यप जीत जाएगा। वराह अवतार आए तो पता नहीं इतना मुठभेड़ हो रही है, कभी ये ऊपर कभी नीचे, ऐसा बहुत सनसनीखेज युद्ध होता है। उसके अंदर देवता लोग है ना बादल में छुपते हैं, क्योंकि तो समझो अगर ये युद्ध हो रहा है, हिरण्यकश्यप लड़ रहे हैं नरसिंह भगवान से और बहुत घंटे युद्ध चल रहा है, और कभी हिरण्यकश्यप की बाजी जोरदार हो जाती है और भगवान थोड़े कमजोर लगते हैं, फिर भगवान ऊपर फिर हिरण्यकश्यप नीचे, तो क्या करते हैं, जब भगवान ऊपर होते हैं तो बादल के बाहर आते हैं, जब भगवान थोड़े कमजोर लगते हैं तो ये बादल के छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हिरण्यकश्यप ने देख लिया कि देवता लोग मजे देख रहे हैं तो बाद में देख लेगा उसको, डरते ना उससे, इसलिए वो बादलों में छुपकर भगवान का युद्ध देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देवता भी शुद्ध भक्त नहीं भगवान के, उनको पूरी श्रद्धा नहीं है कि भगवान है ये मारेगा उसको, कोई चिंता की जरूरत नहीं, आई डोंट केयर, ऐसा नहीं है, तड़ैत मड़ैत अंदर बाहर जब जैसे लगेगा वैसे। भगवान का अगर हार जाएंगे ये जीतेगा तो इसके सलाम करना पड़ेगा ना उसको, ग्वाल बाल ऐसे नहीं है, ग्वाल बाल एकदम बिंदास है, उनको पता है कन्हैया संभाल लेगा इसको, श्रद्धा है उनको। इसलिए देवता बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि देवता की स्थिति जो है भोग की वजह से विश्वास उनका कमजोर हो जाता है, निष्ठा जो है ना वो कमजोर होती है, कोमल हो जाती है, इतना भोग है ना हमने उनके, तो श्रद्धा भी हट जाती है उनकी, कमजोर हो जाती है। तो अभी देवताओं के लिए डू और डाई का बैटल है, करो या मरो। तो हार गए सब लोग अभी, चलो अभी या तो मर जाएंगे क्योंकि बाद में ये मार देगा तो खुद युद्ध में मर जाएंगे तो अच्छा ही है। तो पहले ब्रह्मा जी, अभी ध्यान से सुनना सब लोग, प्रमिला देवी ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी आ गए ब्रह्मदंड लेकर, ब्रह्मदंड का कोई मुकाबला नहीं है, थोड़ा इधर बैठो थोड़ा सा, ब्रह्मदंड का कोई मुकाबला नहीं है। ब्रह्मदंड से प्रहार किया बकवासुर पर, तो वो ना थोड़ा सा ऐसा मूर्छित हो गया, थोड़ा सा उठ गया वापस ब्रह्मदंड से, ब्रह्मा जी हट गए पीछे, यमराज आए यमदंड। अब यमदंड का तो क्या, रावण भी उसका तोड़ नहीं कर सका यमदंड का, यमदंड जब फेंका ना बकासुर के ऊपर, यमदंड टूट गया और बका तो थोड़ा सा ऐसा पीड़ित हो गया, वापस सामने आ गया, यमराज गए निकल गए। इंद्र आया वज्र लेकर, वज्र भी टूट गया। ऐसे एक एक देवता बड़े सबसे आ रहे, त्रिशूल लेकर शिवजी आ गए, तो त्रिशूल से उन्होंने एक पंख काट दी उनकी, लेकिन मरा नहीं वो, शिवजी ने पशुपतरास्त्र चलाया ना त्रिशूल, तो उसे एक पंख कट गया खाली बस। फिर भवानी आई तलवार लेकर, उसने तो दो पैर काट दिए लेकिन फिर भी नहीं मरा वो। फिर अग्नि आ गए, अग्नि अस्त्र, आग्नेय अस्त्र जब छोड़ा उसके ऊपर ना तो केवल उसके रोम जल गए, कुछ नहीं हुआ उसको आगे। चंद्र आ गए निहारी का अस्त्र लेकर, मतलब क्या फ्रीजिंग, अभी इसमें ये जो टेम्परेचर क्या होगा 6-7-8 होगा, मुझे -70 कर देंगे तो क्या होगा आपका, फिर बोलेंगे रहे ना रहे हम, ऐसे बोलेंगे आप। हाँ, उसको निहारी का अस्त्र कहते हैं, इतनी ठंडक पैदा करता है कि ठंडक से ही वो शत्रु मर जाता है, अपना बेस्ट अस्त्र है उसका चंद्र का, वो छोड़ते हैं उसके ऊपर ना कुछ नहीं होता है उसको, चंद्र भी हार जाते हैं। स्कंद जो अपनी शक्ति लेकर आता है, शक्ति का प्रहार करता है, बोलते दो घड़ी ये बेहोश हो जाता है और फिर उठ जाता है, स्कंद भी हेल्पलेस। सूर्य आते हैं, कहते हैं हजारों बाण फेंकते उसके ऊपर, सारे बाण उसके पंखों में घुस जाते हैं, कुछ नहीं होता है उसको। ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं ना, इसमें से एक भी व्यक्ति का एक भी असर अगर निकला ना तो हजारों राक्षस मर जाते हैं, ऐसी शक्ति है उनके अंदर। इंद्र का वज्र मतलब क्या समझते आप, पहाड़ में चकनाचूर होकर ज्वालामुखी निकलती है उससे, एक वज्राघात से। ये सारे अस्त्र शस्त्र जो है, बड़े बड़े लोगों के बेस्ट अस्त्र जो है, एकदम यूजलेस हो रहे हैं। क्या सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वायु, वायु ने वायुवस छोड़ दिया, मतलब ऐसी हवा आएगी ना, ऐसे हम लोग जैसे व्यक्ति तो ऐसे चिंके तक उड़ जाएंगे। आपने वो गए थे ना हम लोग अहोबिलम पे, तो अहोबिलम के स्तंभ के पास पर्वत की चोटी पर ना वो लांग कर ऐसे रेंगते हुए जाना था, चल के जा सकते नहीं है, क्यों, इतनी हवा चल रही है, अगर खड़े हो गए ना आप तो सीधे हवा ले जाएगी आपको, जमीन को पकड़ते हुए ऐसे रेंगते जाना है बच्चों की तरह, ताकि हवा का ऊपर आप, हवा असर कभी करते हैं आप, ज़्यादा लंबे हो गए तो ऐसे गिर सकते हो, इतना सा पौधा होगा तो हवा से नहीं गिरेगा वो, तो आपको छोटा होकर जाना है, ऐसे हजारों ने यात्रा पार किया, इतनी हवा, अभी वो तो ऐसे ही हवा है, वो वाय वस्त्र नहीं है, वो वाय वस्त्र में पृथ्वी भी ऐसे उड़ के जा सकती है, इतनी गति है उसके अंदर, जल के अंदर कितनी गति होती है, कभी कभी तो पूरा वो बाढ़ आ गई थी ना केदारनाथ में, मैंने देखा है वीडियो में, ऐसे बिल्डिंगे ऐसे खिलौने की तरह गिर रही है उसके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे, और बिल्डिंग बह जा रही है पानी के अंदर, इतना फोर्स पानी के अंदर है कि बिल्डिंग को बहा ले जा रहा है वो पानी, कितना फोर्स होगा उसके अंदर, बस गिर रही है, फिर मेटाडोर गिर रही है, फिर वो सुमो अगर गिर रही है उसके ऊपर, इनोवा गिर रही है, ऐसे खिलौने ऐसे 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 करके पानी में जा रहे हैं, कितना फोर्स होगा पानी का बताओ, कितने मंदिर, कितने आश्रम, कितने होटल गिर गए पानी में, बह गए, कोई बोलेगा तो कहानी बोल रहे हैं आप, हम कल्पना कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, इतनी शक्ति है जल में, वायु में, अग्नि में, सर्व विध्वंसक चीजें हैं ये, उनके अस्त्र बनाकर देवता लोग चलाते, तो वायु अस्त्र चलाया ना उनके ऊपर, तो कहते हैं केवल कुछ मील तक वो उड़ा, बाद में कुछ नहीं हुआ उसका, इस तरह से एक समय ऐसे आया कि एक एक करके सारे देवताओं के सारे अस्त्र को वो बगुले ने परास्त कर दिया, सब लोग परेशान हुए, बाप रे, तो सब लोग एकदम एक साथ अटैक किया उसके ऊपर, तो बीच में ना किसी के अस्त्र से वो बेहोश हो गए, तो एक घड़ी के लिए बेहोश रहे, ढाई घंटा के लिए, ढाई घंटा के लिए बेहोश रहे, फिर उठ के आए चौथा एकदम आक्रमण करने के लिए, बकासुर, हाँ बगुला, फिर सब देवताओं ने दोबारा शस्त्र लेकर दोबारा आक्रमण किया उसके ऊपर, तो ये इतना शक्तिशाली राक्षस था, आकाश में ये दृश्य था कि एक बगुला सारे महान देवताओं को खदेड़ रहा है, और सब चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, और ये उनको भगा रहा है सबको, शिवजी, ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, जितने भी लोग हैं, कहते वरुण, वरुण ने उसको वरुण पाश में बांधने का प्रयास किया, वो बांध ही नहीं पाया उसको, ये सब महान चीजें हैं, वरुण, वरुण पाश, बलि महाराज को बांध दिया था उसने वरुण में, इतने महाबली दैत्य को, तो एक वाक्य मुझे अच्छा लगा बहुत, कि आकाश में ये सीन था, आप देख रहे हैं सारे देवता चारों तरफ भाग रहे हैं, या अकेला सबको भगा रहा है, खदेड़ रहा है एक तरह से, ये सारा हो गया, सब देवता लोगों का भाग गए, सब देवता लोग, फिर अंदर क्या हो रहा है, भगवान उसके अंदर है, भगवान उसके अंदर है, फिर ये सबका पराक्रम होने के बाद में भगवान अंदर से गर्म हो जाते हैं, अग्नि तत्व को अपने अंदर बढ़ाते हैं, इतने हॉट हो जाते हैं और अपने आकार को बढ़ाते हैं, तो उसके गले को चोक कर देते पूरा, कंठावरोधनम विधो, कंठावरोधन करते हैं, उसका सांस अटक जाती है, तो ये जलती हुई चीज अंदर जो बढ़ रही है उसको वो उगल के बाहर फेंक देता है भगवान को, और फिर भगवान का उसका युद्ध शुरू होता है, फिर देवता लोग बादलों में छुप के देख रहे हैं क्या हो रहा है, मालूम नहीं, डोंट नो व्हाट हैपेंस, अरे भगवान प्रकट हो गए, हरि बोल, जय हो, फिर भगवान को वापस चोंच पकड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वापस भगवान उसके गोल गोल घूम रहे हैं, भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी पीछे जाकर, और पूंछ से उसको घुमाया, पटक दिया जमीन पर, थोड़ी देर के ओह किया उसने, फिर उठ गया वो, मानो लग रहा था कि कुछ भी करो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो चाहे करो, जो चाहे अस्त्र शस्त्र चलाओ उसके ऊपर, त्रिशूल चलाओ, चक्र चलाओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर अचानक भगवान सामने आ गए, उसकी चोंच को ऐसे पकड़ा, एक चोंच पर पांव रख दिया, दूसरी चोंच को ऐसे खोला और फाड़ के उसको मार दिया, बोलो बकासुर वध करने वाले भगवान की सब देवताओं ने फिर बादलों से बाहर आकर पुष्प वर्षा किया भगवान के ऊपर, तो ये जगह है वही, ये सरोवर वही है जिसके किनारे पे, उसका नाम माधव सरोवर है, बड़ा विशाल सरोवर है, बहुत सुंदर, अभी भी देखते ही बनता है ये सुंदर। तो इसके किनारे पे ये सब युद्ध हुआ, ग्वाल बाल अचंभित होकर देख रहे हैं, देवता आकाश से देख रहे हैं, और भगवान ने सबके सामने जैसे कोई वो पत्ता होता है ना, घास का पत्ता ऐसे दो टुकड़े करके फाड़ता है ना, वैसे भगवान ने चोच फाड़ कर उसका वध कर दिया। विशेषता क्या है, सारे देवता अपना बेस्ट अस्त्र लेकर आ रहे हैं, शस्त्र अस्त्र, और भगवान केवल खोदी है निहत्ते। कहते पहली बार भगवान ने अपने आकार को कम से कम बढ़ाया, उसके पहले आकार भी कोई बड़ा नहीं था, वही उनके नन्हे नन्हे ओठ, उससे उन्होंने पुतना को खत्म कर दिया, वही नन्हे नन्हे इतने इतने से कोमल कोमल मुलायम मुलायम, हाँ हरे कृष्णा, कोमल कोमल पैर उनके, उसको छकड़े को मारा तो छकड़ा टूट गया, मर गया वो। पता है वो कौन था, वो भूत था, वायु भूत था, वायु भूत शक्टासुर, वो वायु के शरीर में था और भूत था, वो छकड़े पे आकर बैठ गया और छकड़ा रूप बन गया, और छकड़ा जो है ना उसके बैठने से जमीन में धंस गया। वो पता है कितना था छकड़ा, एक कमरा था ना, इतना बड़ा कमरा, उतना बड़ा बैलगाड़ी का छकड़ा था वो। तो वर्णन कैसे आता है पता है, यशोदा माई भगवान को छकड़े के अंदर एक पलने में लेकर सो गई पूरी, अगर वो सो गई पूरी तो पलना कितना बड़ा होगा, बच्चा होगा इतना सा, लेकिन मैया तो बड़ी है ना। और कहते हैं कि वो छकड़े के कोने में वो पलना था जिसमें मैया पूरी सो गई, बालक को लेकर गोद में लेकर, बालक सो गया तो मैया चली गई, फिर बालक बीच में उठ गया और पैर से एक पहिए को मारा और छकड़ा पूरा नीचे गिर गया। तो मैं सोच रहा था कि बैलगाड़ी तो इतनी सी होती है, इतनी मैया लंबी सोएगी कैसे उसके अंदर, और वो वर्णन आता है कि वो छकड़े के कोने में था वो पलना, मतलब पलना कितना बड़ा होगा, छकड़ा कितना बड़ा होगा। तो केवल इतने से पैर से, बच्चे लोग बोल रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, बोलते हैं उसको भूख लग रही, भूख लग गई तो वो दूध के लिए ऐसे पाँव हिला रहा था तो पाँव उसको भैये को लग गया, भैये को पाँव लगते ही पूरा छकड़ा धड़ाधड़ करके गिर गया, सारे बर्तन भी सब धड़ा 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 बड़ा 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 आवाज करते करते छकड़ा पूरा चकनाचूर हो गया। और बच्चा ऐसे 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 पितृणावर्त के रूप मारने के लिए भी उतने आकार के थे भगवान, छोटे से थे, जैसे पहाड़ पर्वत के ऊपर कोई बिंदु है, नील बिंदु गर्दन पे नील बिंदु, एक बिंदु दिख रहा है वो स्वरूप ने उन्हें मारा था। बकासुर को मारते समय उन्होंने शरीर को बड़ा किया अंदर पहली बार, केशी को मारते समय मुष्टि डाल दिया उसके मुंह में और मुष्टि को बढ़ाया गर्म करके और चोक कर दिया उसको। तो ये कथा ना गर्ग संहिता में आती है, भागवत में भी आती है, गर्ग संहिता में विस्तार रूप में दी है कथा इसको। तो बहुलाश्व राजा जो है ना वो मिथिला देश के राजा हैं, और नारद मुनि राजा बहुलाश्व को ये कथा सुना रहे हैं। तो बड़े ध्यान से मिथिलेश राजा जो थे बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, उन्होंने कृष्ण का दर्शन भी किया था, कृष्ण भगवान उनके घर में भोजन के लिए भी आए थे बहुलाश्व। तो बहुलाश्व पूछते हैं कि मुझे एक प्रश्न है, आपने कहा कि जैसे ही बकासुर का वध हो गया, वो धराशायी हो गया, उसके शरीर से ज्योति निकली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ज्योति निकली है भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, ये कैसे हो सकता है, जो राक्षस था इतना बड़ा, ऐसे कैसे उसको मुक्ति प्राप्त हुई, तो कौन था ये, ऐसे प्रश्न पूछ रहे वो। तो नारद मुनि उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग सोते होंगे तो मैं कथा को विश्राम दूंगा और मैं भी विश्राम करूंगा। तो वो कह रहे हैं कि एक जाजली मुनि थे, क्या नाम था उनका, बहुत सिद्ध महात्मा थे वो, उनके आश्रम में उनके होने से इतना प्रभाव था कि कोई भी जानवर किसी भी जानवर से शत्रुता नहीं करता था, केवल शेर जो है गले मिल रहा है हिरण के, हाथी मिल रहा है सिंह के, ऐसे प्रेम से रह रहे हैं, कोई मछली नहीं खा रहा है, कोई कीटक को नहीं खा रहा है, सब लोग ऑलरेडी जी रहे हैं आराम से, कोई किसी को समस्या नहीं है, साधु के केवल होने का महात्म्य है वो, केवल वो रह रहे हैं उस आश्रम में इसलिए। तो एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, उसका सर घोड़े का था, उसने वरदान मांग लिया ब्रह्मा से कि मुझे मेरे जैसे व्यक्ति है वही मार सकता है, अगर मेरे जैसा नहीं है तो मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि उसको पता था कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जितने भी जीव हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मनुष्य शरीर है और घोड़े का सर है, उसको मालूम था। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा से, जैसे कि अमर ही हो गया ना वो। तो कहते सत्ययुग में भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया, मनुष्य का शरीर, घोड़े का सिर, और वो अवतार लेकर हयग्रीव का वध कर दिया राक्षस का। तो उसका ये पुत्र था, उसका नाम था उत्कल, उत्कल असुर। इतना सुंदर था वो, बहुत सुंदर, शक्तिशाली, तपस्वी। उसने तपस्या करके इतना बल ब्रह्मा से प्राप्त कर लिया था कि सारे देवताओं को उनके राज्य से खदेड़ कर 100 स्वर्गीय साल तक वो ब्रह्म इंद्रलोक पर राज्य कर रहा था। इतना शक्तिशाली था वो, सारे देवता गुफा में छुपे हुए हैं। और आप बोल रहे देवता बनना है, देवता बनना है, देवता जाना, अरे आधा समय तो गुफा में बिता है उनका, आधा समय ये राक्षसों के आतंक होता है, तपस्या करके आते हैं, उनको हरा देते हैं, भागते हैं सब कुछ छोड़कर, और आधा उनका जो स्वर्गीय जीवन है ना वो गुफा में बिताते हैं चुप चुप के राक्षसों के भय से। क्यों जा रहे हैं उधर, क्या करना है उधर, इतना टेंशन, इतना एंग्जाइटी, भोग तो मिल रहा है लेकिन कब जाएगा, कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। कभी देवता के पास रो रहे हैं, भगवान के पास जाके, अरे भगवान बचा लो, हिरण्यकश्यप ने हमको नौकर बना के रखा है, पानी भरने को लगाता है, पोछा मारने को लगाता है। तो भगवान ठीक है मैं आ रहा हूँ, आऊँगा, अद्भुत रूप में आऊँगा, वध करूँगा उसको, फिर ले लो तुम्हारा राज्य वापस ले लो। फिर वो गया तो बलि आया, वो सब छीन गया, फिर आए भगवान बचा लो, तो भगवान वामन बनकर आए, वापस दे दिया, ले लो भाई। ये सिलसिला चलते रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कोई पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है, टेंशन उनको कि तपस्या करके योग्य हो गया तो मेरा पद ले लेगा इंद्र का, तो उधर भी टेंशन, नीचे भी टेंशन, उधर भी देखना है, नीचे भी देखना है, कोई मेरे ऊपर तो नहीं जाएगा, कोई मेरे ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। अगर कोई तपस्या कर रहा है, जा मेनका, जा जल्दी डांस कर उसकी तपस्या भंग कर दे, हाँ तब मेरा इधर आसन गारंटी हो जाएगा, है ना। इतना टेंशन में क्यों रहना है यार, रहो भगवान का नाम लो, सीधे भगवान का नाम लो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार करो और जाओ भगवान के पास। सो सिंपल इट इज, नो नीड ऑफ वरिंग। वो अप्सरा भी नहीं चाहिए और वो राज्य भी नहीं चाहिए जो अस्थिर है, इसमें गारंटी नहीं खुशी की, क्यों चाहिए आपको वो। हाँ बड़े करोड़पति आप, लेकिन इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, सब आपके लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको कहाँ टाइम है उसको भोगने के लिए। करोड़पति आदमी को नो टाइम टू एंजॉय ऑल्सो, पूरा जीवन तो है संपत्ति को बचाने में, कोर्ट में लड़ने को समाप्त होता है। वैसा ही उनका भी है, राज्य मिल गया है इंद्र का, लेकिन टेंशन कितना है, कभी बलि आ रहा है, कभी हिरण्यकश्यप आ रहा है, कभी रावण आ रहा है, कभी कुंभकर्ण आ रहा है, सब परेशान हर युग में। और क्या है, देवता हरि बोल। तो ये उत्कल जो है 100 स्वर्गीय वर्ष तक देवताओं को गुफा में डराया हुआ छोड़कर एंजॉय कर रहा है वो, तो इतनी मस्ती थी उसके अंदर। अभी देखो आप देवताओं को परास्त करके कोई अगर घूमता रहेगा तो क्या उसका थाट रहेगा, देखो आप सोचो, सब जगह घूम रहा है ऐसा, और दिखने में वो सुंदर था, देवताओं के समान ही सुंदर था वो। अभी तो इंद्र बन के घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते जाजली मुनि का आश्रम में आया, वहाँ एक पौंड था ऐसा, तो पौंड में बहुत मछलियाँ घूम रही है सुंदर सुंदर, इसके हाथ में एक ऐसा बांसुरी जैसा एक था लकड़ी का बांस जो होल था, डाल के बैठ गया पानी में ऐसा स्थिर रखा उसको, तो कुछ मछलियाँ उसके अंदर होल के अंदर आई, पर्याप्त मछली आ गई, खा लिया उसको तुरंत, फिर रख दिया उसके अंदर बैठे, फिर कुछ मछलियाँ अंदर आई, जैसे पर्याप्त मछलियाँ अंदर आई तुरंत खा लिया उसको। जाजली मुनि वहाँ से आए, क्या कर रहे हो सब, हमारे आश्रम में कोई किसी की हत्या नहीं करता है, सब प्रेम से रहते हैं, तुम आकर हमारे आश्रम की शांति और एकोपा यानी कि जो आराम से रहते हैं लोग उसको क्यों भंग कर रहे हो। हाँ गोकुमार जी क्यों भंग कर रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो, तभी भी इसको इतनी मस्ती है। महाराज खड़े हैं सामने, इतने प्रगल्भ महाराज, इतने प्रतापी महाराज खड़े हैं, वो परवाह नहीं कर रहे, फिर डाल रहे उसके अंदर। तो फिर महाराज को गुस्सा आता है, पहले समझाया प्रेम से उसको, नहीं समझा तो बोले तुझे इतनी मछली खाने की इच्छा है, जा तू बगुला बन जा, ऑन द स्पॉट बगुला बन गया वो, ऐसा नहीं 10 दिन के बाद, उधर के उधर उतना सुंदर शरीर लेकर वस्त्र धारण करके मुकुट पहन के राजा बनकर जो घूम रहा था, इतना बलशाली, इतना सिद्ध पुरुष था वो, सिद्धि प्राप्त किया हुआ, ऑन द स्पॉट वहीं कहीं बगुला बन गया। देखा ना, अरे एकदम नम्र हो गया, तुरंत खाड़ करके उसका अहंकार उतर गया। अरे महाराज जी माफ करो, मैं आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको तो गलत समझा, मुझे माफ करना। वो बोला आकाशवाणी एक बार होती है, बोल दिया ना हो गया, अभी नो रिवर्स नो डिलीट। तो चरणों में गिर गया, महाराज माफ करना, मैं मद में था, मद में मतलब मस्ती में था बहुत, मैं अपने बल के अपने प्रभाव के अपने राज्य प्राप्त किया, इंद्र को खदेड़ दिया है सब, मस्ती में था मैं, तो मस्ती में मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। कुछ ना कुछ करो, मैं अभी क्या करूँ, मैं बगुला बन गया, इतना सुंदर था मैं। बोला ठीक है, अभी तुम सही स्थिति में आ गए हो, जब पहले बोल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था तुमको, है ना। क्या बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, सांबाराचा देवाला खेटरांची पूजा। हाँ, जो भाषा जिसको समझ में आती है ना उसमें समझाना पड़ता है उसको। वो चोर को आप बोलेंगे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे कर्म मत किया करो, उससे दुख भोगोगे आप, एक तमाचा मारेगा और वो सोना लेके जाएगा आपके घर से, है ना। लेकिन वो कर्मण्येव अधिकारस्ते बोलेंगे, बंदूक लेकर आओगे ना बराबर, सब ऐसा करेगा और सब लोग चक के चला जाएगा, बिल्कुल उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं आप। जो भाषा जिसको समझती है ना उसमें ही करना चाहिए वाद उपदेश। हाँ, जब प्रेम से समझाया तो नहीं समझा, बगुला बनाया तो बस ठिकाने में आ गए हो, तो ठीक है अभी तुम कम से कम बगुला बनने के बाद नम्र हो गए हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी नम्रता देख के प्रसन्न हो गया मैं। अभी द्वापर में जब भगवान आएंगे ना अवतार लेकर, तो ये तुम बगुला बन के रहोगे वहां पर, तो भगवान तुम्हारा वध कर देंगे। और भी बगुलाष्ट ने प्रश्न पूछा, कितने बड़े बड़े देवता आ गए इतना बड़ा बड़ा अस्त्र लेकर, क्या फर्क नहीं पड़ा उसको, क्या कारण है उसका? क्योंकि उसको भगवान से ही हाथ से वध होने का वरदान था, इसलिए कोई भी देवता चाहते हुए उसको मार नहीं पाए, क्योंकि वरदान था उसको। वरदान बोलो, शाप बोलो, साधुओं का शाप भी वरदान ही होता है। अगर वो जाजली मुनि का अपराध नहीं करता और जाजली मुनि उसको बगुला नहीं बनाते, तो वो कितने जन्मों तक बगुला बना के, सॉरी वो उत्कल राजा के रूप में, उत्कल असुर के रूप में कितने दिन पाप करता वो। साधु का संपर्क हुआ, एक तरफ से शाप मिला उसको, मतलब बाप रे कितना गलत काम हो गया, लेकिन शॉर्टकट में भगवान का मुलाकात हो गया उसका। ये तो पाप कर्मों से केवल यमराज को दिखते रहता वो हमेशा, जन्म जन्मांतर तक, लेकिन संत का संपर्क होने से कितना आमूलाग्र फर्क पड़ता है लाइफ में। देखो आप, जो आगे की जिंदगी इतना डिटरमाइंड था वो पाप ही करना है, क्या इतना मस्ती उसके अंदर, शक्ति इसके अंदर है तो क्या करेगा वो। लेकिन संत के संपर्क में बाय मिस्टेक आ गया, तो उन्होंने शाप दिया लेकिन वो वरदान निकला उसके लिए। वो आगे जाकर, मैंने कंस का पूरा इतिहास बताया एक प्रवचन में पूरे, उसमें वो उधर था, किधर आसाम में था वो, प्राग ज्योतिषपुर नरकासुर के चंगुल में था उधर, वो बकासुर बनकर, उसकी बहन पुतना, उसका भाई अगासुर, साथ में प्रलंबासुर, साथ में तृणाव्रत, साथ में नरकासुर, ये सब लोग साथ में थे उधर। तो कंस वहां गया था और सबको उसने परास्त कर दिया, बकासुर को परास्त कर दिया और अपना दोस्त बना दिया उसको। बड़ी लंबी कहानी है उसकी। बकासुर था ना वो, उस सर्प था आसाम में, फिर ये सबका परास्त पराजय देख के नरकासुर ने आकर हाथ मिलाया, बोले बस कोई फाइटिंग करने की जरूरत नहीं, तुम इतने पावरफुल हो, दोस्त बन जाओ। तो हर देखो वो नरक नल कुबेर मणिग्रीव ने भी नंगे नाच किया था, तो नारद मुनि ने क्या किया, नंगा रहने की आदत है, चलो पेड़ बन जाओ, जितना कम वस्त्र पहनेंगे ना हम लोग आगे पेड़ की तरफ प्रगति कर रहे हैं। बॉलीवुड टॉलीवुड लॉलीवुड हॉलीवुड आदमी बनना है वुड सबको। हाँ, जोक छोड़ दो आप। हाँ, क्योंकि बॉलीवुड में सब में क्या होता है, कम से कम कपड़े पहनने की स्पर्धा होती है उधर, और कम से कम कपड़े में जो ज्यादा आता है उसका ज्यादा फोटो निकलता है, और दुनिया सबको देखती है उनके अंदर फार क्या है, अंदर क्या छुपा हुआ है, सब राज खुल जाते हैं उनके, है ना। तो इसलिए शरीर की नुमाइश मत करो, अच्छी तरह ढको शरीर को अपना, मनुष्य की तरह। जानवर है ना तुम्हारे सामने नंगा, देखो देखो वहां पर गाय खड़ी है, कपड़ा पहने का उसने, बेचारे ठंड में ऐसे नंगे रहते हैं। पेड़ देखो, गर्मी सर्दी, ये तो कम से कम घूम कर कहीं अंदर घुस जाता है, कभी बैलगाड़ी के नीचे, कभी घर के तुम्हारे अंदर घुस जाता है, पेड़ को क्या स्कोप है घूमने का, उधर ही खड़ा है बेचारा वो ठंडी में सर्दी में। सबसे ज्यादा कपड़ा उतार कर घूमने की किसको इच्छा है ना, वो देखो आपका टारगेट उधर तैयार है। आपको वो बनना है, पेड़ पेड़ बनना है और रहो सालों साल खड़े रहो नंगे। लेकिन जब नारद मुनि ने शाप दिया तो शाप नहीं दिया, ऐसे नंगे वो घुमा करते थे और घूमते रहते थे ऐसे ही, लेकिन ऐसा नारद मुनि का संपर्क हुआ तो भगवान के आंगन में पेड़ बने, वो पूरी भगवान की बाल लीला का दर्शन किया उन्होंने, भगवान की बाल लीला वृंदावन में देखने का भाग्य मिला उनको नंगा नाच करने के बाद। देखो क्यों बीच में कौन आया, साधु आया, इसलिए साधु का बीच में हुआ ना इंटरफेरेंस, इसलिए हुआ वो। इसलिए बार बार हम बता रहे हैं कि साधु को मिलो, संत को मिलो जीवन में, वही आपके जीवन में बदल करेगा, बाकी सब कुछ बदलने वाला कुछ नहीं है। आपके कर्म आपको हवा की तरह उड़ा के लेके जाएंगे, जहां पर भी उड़ना है, हवा के रुख जहां चलते हैं कर्म के वहां जाएंगे आप, वो रुख बदलना है साधु को मिलो, वो सारे हवा के रुख बदली करके कैंसिल कर देगा आपका और सीधा भगवान की तरफ आपकी हवा जोड़ देगा आपको, वहीं जाके गिर जाओगे आप भगवान के चरणों में। संत का सहारा होना चाहिए, संत जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट संत है, संत का मुलाकात के बिना जीवन टर्न नहीं हो सकता है हमारा। तो इस तरह से जाजली मुनि की कृपा से ये बगुला बना, बगुला बन के बहुत सारा पाप किया, कंस का संग किया, नरकासुर का संग किया, सबका संग किया, लेकिन बाद में भगवान की तरफ से वो मुक्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी कथा इस वन की ऐसी है कि इस वन में लोकनाथ जी स्वामी महाराज भ्रमण करते थे, चैतन्य महाप्रभु के संग में थे वो जगन्नाथपुरी में, उनके एक मित्र थे भूगर्भ गोस्वामी, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ स्वामी को आदेश दिया कि वृंदावन में जाओ, तो भूगर्भ जी ने कहा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी जाऊं के साथ में। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए, क्यों खुश हो गए, जब दो भक्तों के अंदर मित्रता होती है तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, गुरु जी को भी आनंद आता है, जब उनके शिष्य लोग एक साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहते हैं तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही दो भक्त जब भगवान के मित्रता में रहते हैं, द्वेष न करते हुए, ईर्ष्या न करते हुए, तो गुरु महाराज को भगवान को बड़ा आनंद होता है। तो देख रहे हैं कि दो भक्तों के अंदर इतना प्रेम है कि एक दूसरे के बिना रह सकते नहीं है, तो भगवान ने दिल से आशीर्वाद दिया जाओ मित्रता बनाए रखो और साथ में ब्रज में जाओ। दोनों सबसे पहले ब्रज में आए, उस समय पूरा ब्रज जंगल हो चुका था, सब स्थान लुप्त हो चुके थे, सब जंगल ही जंगल था, घना जंगल था। तो उस समय लोकनाथ जी महाराज यहाँ पर रहकर उन्होंने भजन किया है, उधर एक कुमुद वन है मथुरा के पास, वहां पर भी उन्होंने भजन किया है। वो सब ब्रज में दोनों भूगर्भ जी और ये घूमते थे ऐसे प्रेम से, तो ऐसे ही घूमते थे तो लोकनाथ जी महाराज एक ऐसे कुएं के सामने खड़े थे और भजन कर रहे थे, तो कुएं से राधा विनोद जी प्रकट हो गए, चब्बी चब्बी ऐसे गोल मटोल हंसते हुए, उनके हाथ में आए सीधे विग्रह रेडीमेड, और हाथ में आकर हंस पड़े, नाम पड़ा राधा विनोद। वो बोले अभी मैं आपके संग रहूंगा। तो लोकनाथ जी कहते हैं कि मैं तो कुछ खाने का ठिकाना नहीं, मुझे भूख का होश नहीं, कहाँ रहने का ठिकाना नहीं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा आपको। बोले कुछ भी नहीं, जब भी आप खाओगे वो हमको खिला देना, हम खाएंगे। तो उन्होंने एक थैली बना दी गले में और गले में उनको रख दिया, और जहाँ जहाँ जाते थे गले में डालकर उनको भ्रमण करते थे वो राधा विनोद जी को। क्योंकि ऐसा उनका वर्णन किया है लोकनाथ जी महाराज का कि वो ना हमेशा भाव विभोर होकर ही घूमते थे, उनको होश ही होता नहीं था, खाने पीने का, रहने का, ठिकाने का कुछ भी नहीं, शरीर धर्म का कोई भान ही नहीं उनको था। भूगर्भ जी भी ऐसे थे, उनको भी छैल चिकन भगवान की प्राप्ति हुई, राधा छैल चिकन मतलब छलिया, गोपियों को छलने वाला। तो यहां पर जब भजन कर रहे थे तो वहां नरोत्तम जी यू नो बड़े राजपुत्र, वो खेतुरी ग्राम बांग्लादेश में खेतुरी ग्राम है, खेतुरी ग्राम वो राज्य था उस समय, उसके राजा थे उसके पिताजी, और ये ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन बचपन से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, चला गया एक दिन, बहुत लंबी कहानी है, और चल के ब्रज में आ गए। तो उनको ना नरोत्तम दास जी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दर्शन देकर ये आदेश दिया था कि आप ब्रज में जाओ और लोकनाथ जी महाराज से दीक्षा ले लो, वे राजपुत्र है ये, पूरा राज्य उसका हो सकता है, छोड़कर आ गया वो यहाँ पर भजन करने के लिए, तो ढूंढ ढूंढ के आ गया इधर। तो लोकनाथ जी महाराज इतने विरक्त थे, पहले आके बोले कि हमको दीक्षा लेना है। तो बोले देखो, अब तो राजपुत्र हो, इतने बड़े राजा के पुत्र हो, इतना संपत्ति वाले हो, इतने विद्वान हो, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे से कोई दीक्षा लेते हो आप? मैं किसी को दीक्षा विक्षा देता नहीं, जाओ आप, मेरा काम नहीं है सब कुछ। फिर भी वो लगातार, महाराज दीक्षा दो। तो आदमी बोला कि एक अब्ज जप करके आ जाओ। अभी आपको बताता हूँ एक अब्ज क्या होता है। हम लोग जब सोलह माला करते हैं ना, तो 25,000 जप करते हैं भगवान के नाम का, 25,000। 64 राउंड जप करते हैं ना, तो 1,00,000 का जप होता है। ऐसे 100,00,000 से 1 कोटि बनता है, ऐसे 100 कोटि से 1 अब्ज बनता है। अभी आप ना अपना हिसाब लगाओ कि आपको कितने साल लगेंगे, अगर आप बैठे हुए, चलो अब्ज करूँगा मैं, तो कितने जन्म लगेंगे गिनते रहो। तो ये दिन रात जप करके आ गया वापस, हो गया एक एक अब्ज जप हो गया मेरा। तभी भी दीक्षा देने को तैयार नहीं, तो कहते कोई बात नहीं, मत देने दो, मैं उनके सेवा में रहूँगा। अभी सेवा करने जाओगे तो कोई सेवा ही नहीं है इनके लिए, इतना सिंपल रहते हैं, इतना विरक्त व्यक्ति है, कोई सेवा करने जाओ। अभी सो कपड़ा धोने के लिए कपड़ा देंगे तो धोएंगे ना कपड़ा, खाना खिला के खाएंगे तो खाएंगे ना खाना। ये तो ऐसे ही जो मिलेगा फल फूल खा लिए, कुछ कुछ कैसा सेवा है ही नहीं कुछ, तभी क्या करें। सेवा तो करनी है, करनी ही करनी है किसी भी हालत में। गुरु की सेवा ही हमारे जीवन का परम परम मुक्ति का और परम उद्देश्य है जीवन का। तो सेवा करने वाले को सेवा मिली जाती है। ढूंढ रहे ढूंढ, जिसके मन में प्रामाणिक इच्छा है, कोई नाटकबाजी नहीं है, प्रामाणिक इच्छा है, तो आप बोलेंगे सर आपने बताया हमें जाके ढूंढा, कुछ सेवा ही नहीं है, मैं लौट के आया क्या करूँ सर? नहीं, उधर ही चिपक के रहे, उधर टिक के रहे वहां पर, और देखा कि एक सेवा निकल गई उनकी उसमें से। क्या है, सवेरे के समय ना वो डंडा का मेरा, तो एक सेवा मिल गई सुबह के समय, वो ना शौच करते थे प्रातर्विधि, और जंगल में जाकर एक जगह पर ऐसे जाके बैठ जाते थे। तो उसने क्या शुरू किया, उन्होंने वो उठने के पहले उठकर भली ठंड में जंगल में जाकर वो जगह खुद साफ करके रखते थे वो, और लोटा पानी रख के आते थे। तो एक दिन गए महाराज जी, लोटा पानी मिला, ठीक है होगा कोई, शौच किया और चले गए। अगले दिन वो शौच साफ, वापस एक लोटा जल वहाँ पर। बहुत दिन हो गए ऐसे, तो एक दिन महाराज जी भी जल्दी उठे और जाके झाड़ी में छुप गए। तो क्या देख रहे हैं, नरोत्तम जी अपने हाथ से उनका जो मल मूत्र है वो साफ करके नई मिट्टी डाल के मिट्टी के जल में, मिट्टी के पात्र में नया जल रख के जा रहे हैं छुपके। तब जाकर उन्होंने ना झपक के पकड़ा उनको, नरोत्तम नरोत्तम क्यों करे तुम ऐसा, मैं इतना पतित हूँ, तुम राजपुत्र हो, तुम इतनी घृणित सेवा क्यों कर रहे हो, मेरे मलमूत्र को साफ कर रहे हो। तो क्या करूँ महाराज, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। उसी समय फिर उन्होंने आंखों में आंसू लेकर नरोत्तम को दीक्षा दे दिया। ऐसा शिष्य होना चाहिए हा? गुरु भी मजबूर हो गए उद्धार करने के लिए, न चाहते हुए भी, प्रेम से भी। ये रो रहे हैं और साफ कर रहे हैं, गुरु जी भी रो रहे हैं और गले लगाकर बहुत देर तक आलिंगन करते हैं उनको, उसके भाव को देखकर। कैसे भक्त हो तुम, कितनी नम्रता है तुम्हारे अंदर। लेकिन कहते हैं दीक्षा देने के बाद में कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास मैं वो तो भाव में नहीं हूँ। वसुरु भयते थे हमेशा भगवान के विरह में, चैतन्य महाप्रभु सबके याद में रहते थे, मैं तुमको ट्रेनिंग दे पाऊँ नहीं। तुम वृंदावन चले जाओ जीव गोस्वामी के पास, वो जीव गोस्वामी आपको, दो और भक्त वहाँ पर आने वाले हैं, आएंगे, उनके संग रहो और शिक्षा प्राप्त करो, वो आचार्य श्रीनिवास और श्यामानंद और ये तीसरे, साथ में ट्रेनिंग लिया जीव गोस्वामी जाकर। तो ये भी घटना जो है ना यहाँ पर हुई है। इतनी उत्कट सेवा भावना जो है ना, जो हमारे कैंप में हम लोगों को अपनाना चाहिए। क्या करूँ प्रभु जी, क्यों मोबाइल को देख रहे हो इतना, वो व्हाट्सएप पे का नहीं, वो सेवा ही नहीं है प्रभु जी, क्या करूँ, ओपीडी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, इसलिए बैठा हूँ। लेकिन मैंने जाकर उनको बोला कि आपकी सेवा अगर समझो, आपका दी हुई सेवा समाप्त होगी ना, सेवा ढूंढो, मैंने बोला किचन में जाओ, रोटी बेलो, वहाँ पर बर्तन मांजो या सब्जी को हिलाओ, शाम वाले सब्जी को, लेकिन बैठ के माया के चक्र में टाइम पास मत करो, आप यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो। ये मत ढूंढो कि सेवा ऐसी मिले जल्दी समाप्त हो जाए तो अपना टाइम पास करने के लिए हम फ्री हो जाएंगे, या कहीं गिरिराज की परिक्रमा करें क्या और कहीं चले जाए दर्शन करने के लिए, जब सेवा खत्म होते देखते वेट करते कब खत्म होगी, हाँ जाओ पढ़ो जाओ जाओ, अरे रुकना नहीं जाओ पढ़ो जाओ जाओ, अरे जा चल जा तू अभी, क्योंकि मालूम है ना उसको सेवा करने की इच्छा ही नहीं है, उसको ऐसे ही कैंप के बहाने दर्शन करना है, कहीं जाके महाप्रसाद लेना है, कहीं कुछ करना है, सेवा का केवल बहाना है। लेकिन जो सेवा करनी है ना उसको बताना नहीं पड़ता है। ये सुखाव माता जी आई थी ना, गेस्ट बनकर आई थी, बहुत साल पहले 93 में आई थी वो, तो मैं उस समय कैंप का देखभाल करता था, तो मैंने कहा माता जी बोली कुछ सेवा है क्या, मैं बोला इधर गेट गेस्ट इधर गेट पर बैठ जाओ, और कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ सिंपल काम बताया था, लेकिन उतने छोटे समय पर उनको इस कैंप से इतनी प्रेरणा मिली इतनी प्रेरणा मिली इतनी प्रेरणा मिली कि अगले साल फ़ोन किया कि मैं ना कैंप के पहले ही आना चाहती हूँ और कैंप की व्यवस्था में सहभाग देना चाहती हूँ। वो अमेरिका में टॉयलेट साफ करके एयरपोर्ट के अंदर पैसा इकट्ठा करती थी यहाँ आने के लिए अपने खर्चे से, कई साल तक वो मॉल में साफ सफाई करती थी, यू नो क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश में, पोर्टर, पोर्टर, तो पोर्टर के रूप में उधर एयरपोर्ट में साफ सफाई कर रहे हैं, टॉयलेट सफाई कर रहे हैं, मॉल में सफाई कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं छोटा मोटा ऐसा, परमानेंट जॉब नहीं। उससे आपको अपने आप को संभाल के पैसा इकट्ठा कर करके कर करके फ्लाइट का टिकट का पैसा इकट्ठा करती थी और यहाँ पर 15 दिन पहले आती थी और सारी व्यवस्था करती थी। अभी उनको किसी ने बोला था माता जी आपको यहाँ पर सेवा पे आना चाहिए, आप गेस्ट बन के क्यों आते हो, ऐसा कुछ बोला क्या उनको, वो तो प्रभुपाद की शिष्या है, वो तो वंदनीय हमारे लिए। खुद से सेवा ढूंढा उन्होंने और आज ऐसा सेवा कर रही है कि कोई कर नहीं सकता है उसको पूरा कैंप में। तो सेवा जिसको चाहिए उसको सेवा मिल जाती है, तो सेवा का बहाना नाटक कर रहा है ना वो, उसके लिए कोई सेवा ही नहीं है। मैं क्या करें प्रभु जी, ये भी खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया, कोई सेवा ही नहीं है, घूमने जाऊं क्या अभी। नरोत्तम जी हमको वो सिखाते हैं, इतने फकीर के पास में कुछ सेवा नहीं है फिर भी ढूंढ के निकाला, और जो ना ही बोल रहे थे नहीं दूंगा मैं, उसको प्रेम से देने के लिए विवश कर दिया उन्होंने। ऐसा शिष्य होगा तो वो भगवत धाम नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा वो शिष्य, ये नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा फिर। है ना, हमको भी थोड़ा थोड़ा, उतना तो महान नहीं बन सकते हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए कम से कम ना, सेवा करने की अभिलाषा तो कम से कम मन में होनी चाहिए, मुझे सेवा करनी है बाबा, क्योंकि मेरे लिए अगर नहीं भी चाहता हूँ करना फिर भी सेवा से ही मैं उद्धार मेरा होगा, इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, कोई रास्ता ही नहीं है इसके बिना, यही हमारा क्या कल्याण का मार्ग है, इसमें से अगर नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर हम लोग, वापस कुत्ता बिल्ली बनना ही है फिर, क्या करना है और। अगर मनुष्य बन के अगर भगवत सेवा गुरु सेवा में रुचि नहीं है तो फिर कुत्ता सेवा करना है और कुत्ता ही बनना है उसके आगे जाकर, और कुछ दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर कोई, देयर इज नो अदर वे, इज ओनली वन वे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।